नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन देश में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसमें सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन संबंधी विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कल सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में 20,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें 48 से अधिक देशों के 2,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें 6 देशों की गोलमेज चर्चाएं, देशों के मंडप और नवाचारों के विकास के लिए समर्पित मंडप भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 1,05,00,00,000 रूपये भी हस्तांतरित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित इस प्रणाली से जीविका दीदियों के बैंक खातों में अधिक पारदर्शी तरीके से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुगम बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। चीन के तियानचिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने सदस्य देशों से सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा।
भारत से 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया। साथ ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की यात्रा की सराहना करते हुए इसे विश्व पटल पर भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। श्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की सफल चीन यात्रा उनके कूटनीतिक कौशल और भू राजनीतिक परिस्थितियों को नया रूप देने और पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज शाम 3 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। श्री वोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान कुशल विकास, वित्त और डिजिटल, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में सहयोग सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। श्री वोंग का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन से देश में स्थायी स्वच्छता और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में श्री पाटिल ने सामूहिक उपलब्धियों की सराहना की और नवाचार, अपशिष्ट से ऊर्जा और जलवायु अनुकूल स्वच्छता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की और पंजाब में बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने श्री मान से बातचीत की और राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने पहली बार एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एआईएसएटीएस को सुरक्षा मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में मलेशिया के बाद आईसीएओ के निर्देशा के अनुसार इस तरह के व्यापक ढांचे को लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है। हॉकी एशिया कप में अपने अंतिम पूल मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। बिहार के राजगीर में खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक ने 4, सुखजीत सिंह और गुजराज सिंह ने 3-3 गोल किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।